ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए हम बच्चों को युक्ति बताई है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अभ्यास करो, लेकिन ये अभ्यास थोड़े समय के लिए चलता है, फिर देह अभिमान में आ जाती है। तो इस अभ्यास के लिए बाबा ने एक युक्ति बताई है कि आप अपने पास बार बार लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली हूँ। जैसे शुरू में शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो बाबा क्या करते थे, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, सबको आत्मा, और बाबा लिखते रहते थे। तो बाबा ने कहा जब ये लिखेंगे तो याद कर हो जाएगा, और पढ़ेंगे तो फिर वो भी याद आएगा। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को अपनी याद का चार्ट बनाना चाहिए, और कई बार याद नहीं कर पाते हैं तो याद का चार्ट बनाने के लिए अपनी चेकिंग खुद करनी है, कितना समय मैं बाबा की याद में रहा, और वो याद का चार्ट लिखेंगे तो इससे भी अभ्यास बढ़ेगा। तीसरी बात, एक बहुत गहरी बात बाबा ने कही कि बाबा जो श्रीमत देते हैं, अगर बच्चे उस श्रीमत का पालन नहीं करते हैं तो बाबा बार बार उसको नहीं कहते हैं। बाबा हमेशा कहते थे, कोई भी बच्चा अगर नहीं मानता है तो मैं उसे बार बार नहीं कहता हूँ, क्योंकि भगवान की श्रीमत हो और उसे कहे और वो ना माने तो उसका उसके ऊपर दंड चढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, सेवा के लिए भी बच्चे बहुत प्लान्स निकालते हैं, और बाबा इतने निर्माण चित्त थे। बाबा क्या कहते हैं कि मानो कोई बच्चे बहुत सेवा के लिए प्लान्स निकालते हैं तो वो अपनी राय बाबा के पास लिख के दे सकते हैं, बाबा देखेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल में कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसको और भी एडिशन करके, करेक्शन करके सेवा का रूप बहुत सुंदर बाबा बना करके देंगे, तो बच्चे भी अपनी राय लिख सकते। बाबा ये कभी नहीं कहता था कि बच्चे क्यों लिखे, उनकी राय कौन मानेगा। बाबा कहते नहीं, आप लिखो, बाबा देखेंगे, तो बाबा ही उसको जवाब देते थे। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 27 अगस्त 2025। मूल्य का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे अपने सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे अपने सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ रीति समझते ही नहीं है, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है। याद में बैठेंगे, बुद्धि इधर भटेगी, इधर देखेंगे उधर देखेंगे ना, फिर वातावरण भी खराब हो जाता है। कई बच्चे याद में बैठते हैं और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती है, वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं, याद करते ही नहीं है, फिर चार्ट कैसे लिखे। अगर कोई झूठ लिखता है तो बहुत बड़ा दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना चाहिए। कई बच्चे इतने होशियार होते थे, बाबा को लिखेंगे, बाबा हम तो 4 घंटा योग, बाबा हम तो सारा दिन योग में रहते हैं। बाबा मुस्कुरा देते थे, बाबा कोई जवाब नहीं देते थे। बाबा कहते अगर मैं इसको कहूँ ये समझेगा नहीं, बाबा के सामने झूठ बोल रहा है तो फिर उसका दंड पड़ जाएगा। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत बड़ा दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी भव, अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानती हो हम उस बेहद के बाप से बेहद के सुख का तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए सतो प्रधान पवित्र बनना है। सतो प्रधान पवित्र बनने बगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक। ये तो अपने 5 लिख दो। फिर बाबा ने दूसरी युक्ति बताई है, बाहों पर नाम लिखते हैं ना, जैसे बचपन पे होते थे ना, तो उनके माँ बाप क्या करते थे, वहां पर उसका नाम बाजू पर उसका नाम लिख देते थे, कुछ ना कुछ लिख देते थे, कोई ना कोई निशानी बनवा देते थे, जिसको क्या कहते हैं, टट्टू कहते थे उस समय, मालूम नहीं औरों की भाषा में क्या कहते, वो बाजू पे कोई ना कोई निशान, तो बच्चे को कहीं भी इधर उधर जाएगा उसको पहचान लेते थे। वहां पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिखो, हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहे। मुझे ये भी याद आ रहा है, कुछ समय बाबा ने, बहुत समय पहले बाबा ने ये लिखाया था कि सब एक बड़े बड़े पत्ते पे लिख करके लगा दो। उस समय लकड़ी के बड़े बड़े पत्ते बनाए थे और वो जगह जगह लिख दिया था। शिव बाबा याद है, शिव बाबा को याद करो, हम आत्मा है, ऐसे करके लगे रहते थे, उसको देखते ही याद आ जाती थी, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद होगा। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो है नई ते नई याद। वो देवताओं के चित्र लगाएंगे ताकि याद रहे, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद जो है ये नई ते नई याद है। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम क्या बन जाएंगे, बाबा को याद करने से, बाबा को समझने से, और क्या बनेंगे, भट्टी वाले बोलो, हैं, बोलो बोलो, बाबा ने कहा सौभाग्यशाली। अच्छा, जो सौभाग्यशाली बनेंगे वो बाबा को बताओ, हाथ खड़ा करो ना। अच्छा, जो वो पद्मा पद्म भाग्यशाली बनेंगे, वो डबल बनना ही है, बाबा हमेशा कहते हैं ना, डबल बनना है। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, बाबा कहते हैं पद्म भाग्यशाली बनते, डबल, पहले सौभाग्यशाली बनेंगे फिर पद्म भाग्यशाली बनते। बाप को न जानने के कारण और याद न करने के कारण कंगाल बन पड़ते हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को खुशी, जीवन को सुखी बनाने आए हैं, भले याद भी करते। बाबा कहते हैं एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं, भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी, फिर बाबा बता रहे हैं भारत वालों ने क्या किया, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, जिधर देखता उधर तू ही तू है, तो उसको देख के फॉरेन ने भी काफी किया है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारत से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे, सारे विश्व का आधार कौन है, भारत है। भारत महान तो विश्व महान, भारत गिरता है तो विश्व गिरता है, भारत गिरा तो सारा विश्व ही गिरा है। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए, अपने को गिराने और दूसरों को गिराने के लिए। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को और सबको गिराने। बाप कहते हैं मैं ही यहाँ आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ, ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गिलानी कर दी है, इतना ऊंच बनाता हूँ क्या से क्या देता हूँ फिर भी गिलानी करते रहते हैं, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लानी कर देते ना, इसलिए तो कहा है। फिर बाबा आते हैं, इनका भी अर्थ बाप आकर समझाते हैं। बलियारी एक बाप के हैं, तुम अभी जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं। बाबा को ही बहुत ख्याल होता था कि शिव जयंती के दिन छुट्टी होनी चाहिए, बाकी कई त्योहारों पर गजेटेड छुट्टी होती थी, शिव जयंती के दिन छुट्टी नहीं होती थी। तो बाबा ने पुरुषार्थ कराया कि इस दिन भी छुट्टी होनी चाहिए, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कई लोगों को तो इस बात का कदर ही नहीं है, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम समझते हो जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने से फलाने समय तक स्थापन किया, उसके पहले है ही देवी देवता धर्म, उनको भी बिल्कुल नहीं जानते। पहले के क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, देवताएं थे, लेकिन वो कौन थे बाबा के थे उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर के समझाते हैं, बाप ही सबसे ऊंचा है और किसकी महिमा है नहीं, धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी, बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते। पतित दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना और फिर बच्चों को माया पर जीत पहनाते हैं, ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद लंका की बात नहीं है। कहते लंका में रावण का राज्य था, बाबा कहते ये हद की लंका की बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया ही बेहद की लंका बन गई है, हद लंका की बात नहीं है, ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है। बाकी तो बाय प्लांट्स हैं, भारत मुख्य है, बाकी सब धर्म और बाकी देश धीरे धीरे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी तो सब बाय प्लांट्स हैं, भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज वाले राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं उनको कोई लाइट का ताज नहीं मिलता। द्वापर से लेकर के अनेक बादशाह आए, अनेक मुगल बादशाह आए, दूसरे बादशाह आए, तो बाबा कहते बाकी बादशाहों को जो है डबल ताज नहीं मिलता, लाइट का ताज नहीं मिलता है, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। देवताओं तो फिर देवताएं तो फिर भी बाबा बता रहे हैं, देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। तो बाबा कहते शिव बाबा को क्या कहते हैं, परम पिता परमात्मा पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे, लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित हो। अब बाबा को लाइट नहीं, देखो कितनी बार क्लियर बताया कि शिव बाबा को लाइट नहीं दे सकते, वो पहले से ही लाइट है, उसको लाइट तब दें जब वो पतित बने फिर पवन बने। तो बाबा कहते हैं मैं कभी भी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है, उस जैसी लाइट किसी के पास नहीं है, ना देवताओं के पास है। तो बाबा कहते हैं वह कभी भी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। बिंदी पर लाइट कैसे दे सकेंगे, बिंदी पर लाइट डालो तो क्या होगा, छिप जाएगी, और बिंदी पहले से ही लाइट है। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहर गुहर बातें समझाते रहते, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। बाबा इतना सरल रीति से बताते हैं ताकि बच्चों की बुद्धि में बैठ सके। मुख्य है ही याद की यात्रा, इसमें ही माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50% या 60% लिखते हैं परंतु समझते ही नहीं है। बाबा के पास चार्ट लिख करके भेजते थे, बाबा मैं तो 50% बाबा की याद में रहता हूँ, बाबा मैं इतने परसेंट बाबा को याद किया, बाबा उस चार्ट को देख करके साइड में रख देते थे, बाबा कुछ नहीं बोलते थे। बाबा कहते मैं क्या बोलूँ, अगर बोलूँगा तो बच्चों ने तो सच लिखा ही नहीं है, फिर क्या होगा, झूठ का दंड पड़ जाता है। बाबा मुस्कुरा करके फिर कभी कभी बाबा लिख देते थे, बाप नहीं मानते कि तुम इतना टाइम बाबा की याद में रहे, तो बाबा मुस्कुरा देते थे। तो बाबा कितने भर कोई याद की चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं परंतु समझते ही नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं बाप को याद कैसे करें, अब एक तरफ लिखा 50% याद किया, दूसरी तरफ बाबा को पूछते हैं कि बाप को याद कैसे करें, इस बात को याद कहें बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट भी बैठते हो तो उसमें भी जांच करो। बाबा कहते 50% तो छोड़ो, 10 मिनट भी बैठते हो तो उसमें जांच करो। याद में अच्छी रीति रहती है, बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को भी खराब कर देते। शुरू शुरू में बाबा ने बच्चों की बठियां रखवाई थी तो उस समय बाबा सबको बोलते थे याद में बैठो, अगर कोई याद में नहीं बैठ सकता था तो बाबा उनको कहते थे तुम अलग जाके याद करो क्योंकि वायुमंडल खराब कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कोई याद में रह नहीं सकते तो वह फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में भी विघ्न डालते हैं, सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो तो यहाँ भी थोड़ी शांति होगी, सारा दिन बाहर बुद्धि भटकी याद में बैठ नहीं सकते तो यहाँ बाबा की याद में बैठेंगे तो बाबा कहते यहाँ भी कहाँ शांति होगी। सो यहाँ भी थोड़ी शांति होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं, झूठा लिखने से और भी दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते, बाबा को पता है कई प्रकार की छोटी छोटी भूले करते हैं, बाबा कुछ कहते नहीं थे। तो बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष पड़ जाए। कई बार कई ऐसे भी आते थे बाबा के पास जो बहुत भूले की हैं, तो दादियां बाबा को बताती थी, बाबा देख करके उसको प्यार दे करके टोली दे करके विदाई दे देते थे। तो दादियां कहती थी बाबा आपने इसको क्यों नहीं बताया है, कुछ तो बताना चाहिए। बाबा कहते बाबा जानते बच्चा सच बोलेगा नहीं और जो बताएंगे उसके लिए बहुत वो आर्ग्यू करेगा। अभी भी कई लोग हैं कोई भी बात होती है तो उसको सुनते ही नहीं है, आर्ग्यू करेंगे डिबेट करेंगे, तो डिबेट करने से और नुकसान होता है ना। तो बाबा कहते अगर सच नहीं बताएंगे बाबा ने जो कहा नहीं सुना है तो फिर क्या होगा, दंड पड़ जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं झूठा लिखने से और भी बहुत दंड पड़ जाते हैं, सच बताते नहीं, बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी, अक्सर करके सब झूठ बताए। अब कौन जाके बाबा को बताएगा कि मैंने ऐसा किया, पता तो पड़ता है ना, तो बाबा के सामने ना चुप रहेंगे, कोई झूठ भी बोल देते थे, अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना, तो और भी सीखेंगे। बाबा कहते एक सच सुनाएगा तो दूसरे भी उनसे सीखेंगे। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है, नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण होता है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बीज डाल दो तो एक छोटे से पत्ती से आएगी, फिर दो छोटे छोटे पत्ते आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो बाबा की तेज तो सब जानते ही है ना। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज तो होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कहेगा बाप कौन है क्या करते हैं। बाबा कहते ऐसी बात है अनकॉमन है जो दुनिया में कोई बता ही नहीं सकते हैं। ये है अनकॉमन बात, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते हैं, जितने भी महात्मा पूर्वज हुए हैं सब नेति नेति करते हैं। और अभी के महात्मा तो नहीं कहते ना, पहले वाले तो कहते थे ना नेति नेति, भी हम नहीं जानते, सच तो बोलते थे। सब नेति नेति करते हैं, ड्यूरेशन को भी नहीं जानते, बाकी क्या जानेंगे। ड्रामा के ड्यूरेशन कितनी है उसको नहीं जानते, तो बाबा कहते बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते। साकार में बाबा क्या करते थे, बच्चों को कहते थे सब महारथी बच्चे आए, बाबा सेमिनार करेंगे। सेमिनार का अर्थ ये होता था बाबा बैठते थे, ज्ञान की चिटचैट करते थे, औरों को समझाना है योग का चार्ट कैसे बनाना है, तो बाबा उसको सेमिनार कहते थे। तो बाबा कभी कभी ये सेमिनार जो मेडिटेशन हॉल है ना, ये बाबा के टाइम पर पहाड़ी थी, और बाबा कभी वहां जाकर के एकांत में बैठते थे और योग लगाते थे, और बाबा बच्चों को बुलाते थे। बाबा पहाड़ी पर खड़े हो जाते थे, दादियां सब आंगन में हैं, और गीत बजता था धरती को आकाश पुकारे, सब दौड़ दौड़ करके बाबा के पास चले जाते थे। और बाबा के पास जाना, बाबा उनको दृष्टि देते, दृष्टि के बाद बाबा कहते थे बैठो अभी सेमिनार होगा। सेमिनार मीन्स याद का चार्ट, सेमिनार मीन्स ज्ञान को कैसे धारण करना है और उनको कैसे समझाना है, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो, बाबा सेवा के लिए भी महारथियों को बुलाते थे। बाबा कहते थे अच्छा हर एक अपनी अपनी राय दो, राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं जिनके नाम है उनको भी राय देनी है। होता ना कोई भी कोई प्रोग्राम के लिए अपनी राय तो दे सकता है, कभी कभी ऐसे भी राय देते हैं जो बहुत सबके लिए अच्छी हो जाती है। ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही राय देनी है, हमारा नाम नहीं है हम कैसे दे। कईयों को फीलिंग आ जाती है हमारा नाम तो है नहीं, मेरे को ये विचार, अरे तुम बताओ तो सही, बाबा बताएंगे कैसे करना है। ऐसे नहीं कि हमारा नाम नहीं है, हम कैसे नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई भी राय हो एडवाइस भी लिख सकते हो, बाबा को अपनी राय लिख सकते हैं, फिर बाबा देखेंगे कि उसको कैसे प्रैक्टिकल में कर सकते, एडवाइस भी लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी। बाबा कहते लिखो तो सही, बाबा देखेंगे कौन कौन सी राय दी है, उसमें किसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। इस बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे, आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो, माया ने सबको सुला दिया। माया ऐसी है सुला देती है, वो जागती नहीं है, कितना भी उनको समझाओ माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही तब है, कब, जब मौत सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब सुनो, पढ़ो ना पढ़ो, सुनो ना सुनो, बाबा कहते मरना तो सबको है, सुनो तो अच्छा है, नहीं सुनो तो भी मरना तो है, पढ़ो ना पढ़ो मरना जरूर है, तैयारी करो ना करो, या करो या ना करो, नई दुनिया की स्थापना जरूर होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा सुदामा को उदाहरण देते हैं साकार टाइम पर बाबा के सामने, जैसे गांव-गांव से माताएं आती थी, हरियाणा की तरफ से जैसे रिवाड़ी है इधर है, तो माताएं आती थी अपने साथ एक छोटी सी पोटली ले आती थी। उस पोटली में क्या होता था, थोड़ा सा चावल है, थोड़ी हल्दी है, थोड़ा नमक है, थोड़ा छोटी छोटी चीजें लाती थी और बाबा को देते थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, बाबा खुद ही जाते थे किचन में, कहेंगे आज सभी चावल के साथ ये भी बनाना है, तो सब के मुख में जाता था। तो बाबा कहते हैं सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलना चाहिए, है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे। अब बाबा बता रहे है ही काम, तो चावल मुट्ठी वही देंगे ना, बाकी क्या देंगे, कईयों के पास बहुत कुछ होता है तो वो तो देते नहीं है, टाइम आने पर देंगे। तो बाबा कहते है ही चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है ना, मम्मा कैसे आई थी, बिल्कुल खाली हाथ आई थी। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, मम्मा तो ऐसे जैसी थी जिस ड्रेस में थी आई और बाबा की बन गई। फिर कितना ऊंच पद पा लिया, इसमें पैसे आदि की बात ही नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई भी फी आदि नहीं, यहाँ आने के लिए पढ़ाई के लिए बाबा कहते कोई भी फीस आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे। ऐसे भी बहुत त्यागी तपस्वी हैं, लाडले हैं, वो हमेशा समझते हैं ये थोड़ा बहुत कणा दाना है बाबा के कार्य में लगा दे। कई ऐसे हैं जमा करते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते, इतना जमा कर लेते हैं, अभी इतना देंगे, इतना भी रख लेंगे, इतना बैंक में डालेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा वो बाबा के पास भेजेंगे, ना मिलेगा इंटरेस्ट ना बाबा के पास आएगा। इसलिए कई ऐसे अच्छे बच्चे हैं, तो हमारे पास पैसे पड़े हैं क्यों ना यज्ञ में स्वाहा करें, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे तो सफल ही करें। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि करते जरूर हैं, वह पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य देना, मनुष्य भी करते ना, दान पुण्य करते रहते हैं, कुछ कुछ करते ही रहते हैं, तो बाबा कहते वह है पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य देना, फिर भी उसका अलग काल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उसका रिटर्न क्या मिलता है, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी तो बीमारी आदि होगी ना। कितने धनवान है, करोड़पति अरबपति है, कोई ना कोई बीमारी तो लग जाती है ना, फिर भी उनको कोई ना बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसी ने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उससे सब मनोकामनाएं सिद्ध नहीं रहती हैं। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में अच्छा लगता है। खुद पावन बनते हैं, बाबा से इतने प्राप्ति होती है, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हम क्यों ना यज्ञ की सेवा में लगाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी अलग काल के लिए। सब कहती हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती ही नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में, गायन भी है राम राजा राम प्रजा, गायन करते ना राम राजा का, वह है अमर लोक। वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता ही नहीं, वहाँ कोई कह रहा मर गया है, वहाँ यहाँ तक कहेंगे कि एक चोला अभी छोड़ रहा है, जाकर के अभी दूसरा नया चोला लेगा, कहने वाले भी कहेंगे और जो मरने वाला वो भी यही कहेगा। बाबा कहते हैं वहाँ मरना अक्षर होता नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक और उसको अमर लोक कहा जाता है, वहाँ तो मरना होता ही नहीं है, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते साकार में। बाबा उस दिन भी मुरली में बताया कि मैं चित्र के सामने बैठ जाता हूँ, अच्छा मैं ऐसे जाकर बच्चा बनूंगा, छोटा मिचलू बनूंगा, तो बाबा कहते अपना पुराना शरीर छोड़ एक छोटा बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री के श्रीमत पर चलने से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए, अभी तो बाबा के टाइम तो बहुत कम थे, अभी तो सेंटर खुलते ही जाते हैं और गीता पाठशाला तो इतनी खुलती जा रही, हमारी ये सब बहनें बैठी है, कितने सेंटर खुलते जाते हैं सुनंदा बहन, कितने हैं गिनती ही नहीं कर सकते, खुलते ही जाते हैं ना, तो बाबा के महावाक्य साकार हो रहे हैं। तो बाबा कहती हैं तो कितने तो सेंटर खुलने चाहिए, थोड़े भी आते हैं वह कम है क्या। कई बार बाबा को कहते थे बाबा सेंटर खोला है, बहुत मेहनत की है, परंतु तो बहुत कम आते हैं। बाबा कहते हैं कोई कम बात है कि एक भी आया वही बहुत है, एक बारिश बना अनेकों को बाबा का बच्चा बनाएगा। तो बाद में फिर प्रदर्शनी शुरू हुई ना, कभी कभी प्रदर्शनी लगाते थे तो कभी मुश्किल से एक बच्चा निकलता था, और कोई तो निकलते नहीं थे, बच्चे बाबा को लिखते थे हमने इतना खर्चा किया कोई आया ही नहीं है, तो बाबा कहते क्यों ना सोचते हो, अब आज नहीं कल तो आएगा, हट्टी तो एक ही है ना, और आकर वर्षा लेगा। बाबा कहते थोड़े आते तो कम बात है क्या, थोड़े में तो अच्छा आप सारा लाभ ले लोगे, बहुत आएंगे तो लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो बाबा कहते हैं थोड़े भी आते हैं वे कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं, पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया, क्योंकि तुम ऐसी बातें बताते हो आखिर आपको किसने बताया, शास्त्रों में तो लिखी नहीं है, पूछेंगे तुमको ये किसने बतलाया है। अरे हमको बताने वाला तो बाप है, कितने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, उनको समझाओ। हमको कौन समझाता है, हम बीके हैं, तुम भी तो बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमन ट्री का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा कौन है? ह्यूमन ट्री का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इससे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती है ना, तुम्हारी देवी देवताओं को कुल भी बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते। बाबा कहते हैं यहाँ बाबा से हम ज्ञान लेकर क्या बनते हैं, फिर वहाँ हम राज्य करते हैं। ये किसकी बुद्धि में रह न सके। ये भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके, जड़ चित्र की परछाया पड़ सकती। कहते ना देवताओं के पांव जो है तमो प्रधान दुनिया में नहीं पड़ते, तो बाबा कहते हाँ उनके जड़ चित्र बनाते हैं, बहुत पूजा करते ना, उनकी परछाया तो पड़ सकती है। हाँ उनकी जड़ चित्रों की परछाया पड़ सकते हैं, चैतन्य का नहीं पढ़ सकता। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। एक है याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्ची कहती है बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो बाबा फिर क्या कहते थे? बच्चे कहते बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो बाबा कहते थे बाबा कहते तुम्हारे मुख में बोलो है, बोलो बोलो क्या तुम्हारे मुख में आया ही नहीं तो धीरे बोल रहे। हाँ गुलाब आया या गुलाब जामुन आया? तो गुलाब जामुन तो मिल जाता है खाने को यहाँ, लेकिन बाबा कहते कितना शुभ संकल्प है, इसलिए तुम्हारे मुख में गुलाम, लेकिन फिर आगे लेकिन क्या है, इसमें भी मेहनत करनी है, ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे, अब क्या देखेंगे, टीचर्स मैंने ध्यान दो, गाइड ध्यान दो, तुम एक दिन देखेंगे हर एक 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 पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आए। अब तो छोड़ो 100-200 तो उनके लिए कॉमन बात है, कहेंगे हमको 1000 लाना है, 2000 लाना है, हमको इतने लाना है, तो अब तो कहेंगे इतने लाना है। पर बाबा के घर में जगह भी तो हो ना, यहाँ भी ऐसे करते हैं, जब बट्टी का टाइम है उनको देते हैं संख्या कम, पता नहीं कहाँ कहाँ से 2-4, 10-15 बढ़ा के ही आते हैं। यहाँ आते हैं फिर मुश्किल होता है, जगह रहने की नहीं होती है, फिर कहेंगे क्या करें, फिर धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी संख्या हो, जितनी लिमिट हो, उसी अनुसार ही करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी लाएंगे, आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़ी कह सकेंगे कि ये होता होगा ये होगा, बाबा ने केवल इशारा दे देते थे कि आगे चल करके क्या होगा, पहले थोड़ी बताएंगे ये टीचर 1000 लाएगी, ये 500 लाएगा, ये 200 लाएगा। बाबा कहते पहले क्यों बताएं, वो जब लाएंगे तब देखेंगे, पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। जो तुम पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हो, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही सुख करता और दुख हरता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है, ये सब है माया का पंप। बाबा कहते माया का पंप ऐसा है, हवा में उड़ रहा है, कुछ भी होगा, हवा का झोंका आएगा, ये पंप एकदम गिर जाएगा। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत अचानक कैसे हो जाता है, बैठे हैं स्वर्ग में कुछ ना कुछ हो जाता है, वहां तो मरने का डर नहीं रहता, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि आदि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जो तुम वहां कोई समाधि बनाना ये करना ये सब रस्म रिवाज होता ही नहीं है, जो तुम कितना सुख में जाते हो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी दुनिया में बाबा ले जाते हैं। तो बाबा कहते फिर कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए, गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह अपने मत से चलना होता है। दुनिया में भी गुरु की मत लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बाबा कहते हैं बाबा की श्री मत लेनी चाहिए, या फिर ऐसे थोड़ी है कि अपनी मत पर चलना चाहिए। आश्री मत क्या काम देगी, क्या मदद करेगी, आश्री तरफ ही धकेलेगी। आश्री मत क्या काम करेगी, आश्री तरफ ही धकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत ऊंच से ऊंच, इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानो वाच्य। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को पावन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक भी बनते। श्रीमत से भारत को विश्व को पावन बनाते हैं, फिर उसके मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो वह फिर मत पर चलते नहीं, जिसकी तकदीर में नहीं होगा बाबा कितना भी उसको समझाए लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने मत करेंगे। तो बाबा कहते परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वह मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है किसको भी अपना कुछ अकल हो राय हो तो बाबा को भेज दे। बाबा ने पहले भी कहा सेवा के लिए अगर किसको कोई प्लान आता है, दादी भी हमेशा करती थी जब मीटिंग करते थे, दादी सबसे पूछती थी कि किसको कोई भी प्लान हो कुछ कहना हो तो बताओ या लिख करके दो, अभी भी ऐसे ही चलता है। तो बाबा ने ये बच्चों को कहा कि सबकी राय लेनी चाहिए और भी अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। बाबा ने समझाया है किसको अपना कुछ भी अकल मीन्स कुछ राय हो तो बाबा को भेज देंगे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं, नए नए बच्चे भी निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन कौन अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों की भी राय निकालनी चाहिए कि बिजनेस वालों को कैसे समझाएं, इनको कैसे समझाएं। तो बाबा कहते ये बच्चों को क्या करना है, राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें तो बाप का परिचय मिले, दुकान में भी सबको याद कराते रहे। बाबा के टाइम पर बच्चे आते थे, कोई दुकान पर बैठते थे, कोई कुछ भी काम करते थे, तो बाबा कहते हैं दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं, अरे कहानी सुना रहे कोई बात सुना रहे नहीं पसंद आती तो नहीं सुनो, बाबा की इसमें नाराज होने की तो क्या बात है, एक धर्म था ये तो सब जानते हैं ना, भारत में एक ही तो धर्म था, इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं, सबका बाप एक है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आश्रय मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उसकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती हैं और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से ही पुरुषार्थ में भी विशेष रूप में लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। स्लोगन, सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थ। सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थ। आज का व्यक्ति इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहिए मेरे बच्चे। क्या कहेंगे? दिल से मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। अच्छा, अभी सुनेंगे दादी जी की विशेषता। उन विशेषताओं को सुनने के लिए सांसद बुद्धि में ये भी रहे कि दादी जी ने हमें क्या नहीं सिखाया है, कितने वरदान दिए हैं। तो आज का, चित सदा शांत रहे। दादी का चित अंदर से शांत रहता था। चित सदा शांत रहे, बुद्धि स्थिर रहे और संस्कार शीतल रहे। मेरा यही लक्ष्य रहता है कि मैं कोई भी कर्म करते अपनी स्थिति को विघ्नों में ना लाऊं। परिस्थिति माना पराई स्थिति, उस परिस्थिति में भी मैं अपनी स्थिति को नीचे क्यों लाऊं? मुझे संकल्प में भी खंडित मूर्ति नहीं बनना। बाबा दादी के संकल्प इतने प्योर होते थे, पावरफुल, तो दादी कहती हैं मुझे संकल्प में भी खंडित मूर्ति नहीं बनना है। इस समझी से चित्त शांत हो जाता, बुद्धि स्थिर हो जाती, संस्कार शीतल हो जाते हैं। अभी हम किसी भी आदत के वश नहीं हो सकते। ये दुनिया, ये वैभव, इन सबको बुद्धि से भूलो, इसी में ही अतीन्द्रिय सुख है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन के सभी, मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहने ध्यान देंगे, जैसा कि कल बोर्ड पे भी लिख दिया गया, मधुबन और ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनों को आज दादी दिवस की सौगात मिलेगी। इसलिए सभी 10:30 बजे तक शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे, जहां प्यारी प्यारी दादी जी के स्मृति दिवस की सौगात मिलेगी। सौगात के बाद ब्रह्म भोजन भी स्वीकार करके आएंगे। ट्रायल वाले आज नहीं जाएंगे, ट्रायल वालों का कल बताया जाएगा, लेकिन आज सभी समर्पित भाई बहने शांतिवन में जाएंगे। 9 बजे से ट्रांसपोर्ट मिलेगा और वहां से नीचे जा सकते हैं। अधिकतर बहुतों के पास तो अपना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, औरों को भी साथ ले जा सकते हैं। अच्छा, वही लिखा है, और सभी जो भी जाएंगे सभी अपने साथ स्मार्ट कार्ड भी लेकर के जाएंगे। प्रातः 9 बजे ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के आगे HR13U3845 की नंबर की कार खड़ी है, वहां से हटा करके दूसरी जगह लगा दे, क्योंकि और कारें वहां से निकालना मुश्किल होता है। बाकी एक सूचना है, जब पार्टी के आते हैं भाई बहने, वो मम्मा बाबा दादी दीदी स्लोगन और हिस्ट्री हॉल के बाबा के हिस्ट्री की फोटो और कई कार्ड पूछते रहते हैं, अलौकिक कार्ड आदि, वह सब यहाँ पर अवेलेबल है। जिसको मम्मा बाबा साकार दादियों की, एडवांस पार्टी वालों की, बाबा के हिस्ट्री हॉल के जो भी चित्र हैं वह भी, और स्लोगन कार्ड आदि चाहिए, तो वह फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। और फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है जो दूध डिपार्टमेंट है उसके नीचे है, तो उसका टाइमिंग्स है प्रातः 8:30 से 12 बजे के अंदर, वहां से जाकर के ये सब चीजें ले सकते हैं। जिसको चाहिए वहां सब चीजें वहां पर उपलब्ध है, जिस किसी को चाहिए तो ले सकते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। भट्टी वाले हाथ खड़ा करो, देखो कितना अच्छा है सब, बहुत अच्छा। बाबा आपका स्वागत करते हैं, इंद्र देवता भी आपका स्वागत कर रहे हैं, फिर से ताली बजा करके इनका स्वागत करो। ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, पक्का। बाबा का प्यार मिला और क्या चाहिए, बाबा मिला और क्या चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। क्या बोला? अच्छा।